आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। अमेरिकी सेना द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नौसैनिक नाकेबंदी की समय सीमा अब कुछ ही घंटों दूर है। सप्ताहांत की संधि बातचीत युद्ध खत्म करने में विफल रही थी। इस बीच प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने स्पष्ट किया है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस क्षेत्र में अपने जहाज नहीं भेजेगी। वहीं ऊर्जा और उर्वरक आपूर्ति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री इस सप्ताह मलेशिया और ब्रुनेई का दौरा करेंगे। सरकार देश में पेट्रोल और अन्य जरूरी आयात की आपूर्ति को सुरक्षित करने के प्रयास तेज कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कल एशिया के दौरे पर रवाना होंगे। 4 दिन के इस दौरे में विदेश मंत्री पेनी वोंग भी ब्रुनेई और मलेशिया में अपने समकक्षों से मुलाकात करेंगी। ये दोनों देश ऑस्ट्रेलिया की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये यात्रा सिंगापुर जैसे अहम निर्यातक देशों के साथ हालिया संपर्क को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा है कि ये पहल ऐसे समय में की जा रही है जब मध्य पूर्व में जारी अनिश्चितता के बीच वैश्विक आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली बार सेना के सबसे ऊंचे पद पर एक महिला की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री ने कैनबरा में लेफ्टिनेंट जनरल सुजान कॉयल की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही नौसेना प्रमुख मार्क हैमंड को चीफ ऑफ डिफेंस बनाया जाएगा, जबकि रियर एडमिरल मैथ्यू बकले नए चीफ ऑफ नेवी होंगे। ये फेरबदल तब किया गया जब मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स एडमिरल डेविड जॉनस्टन ने लगभग 50 साल की सेवा के बाद जुलाई में पद छोड़ने की घोषणा की। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल कॉयल इस पद के लिए हर तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर 2 साल पहले बोंडाई चाकूबाजी हमले में जान बचाने वाले एक सुरक्षा गार्ड को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। इस हमले में हमलावर जोएल काउची ने 6 लोगों की हत्या कर दी थी और 10 अन्य घायल हुए थे। त्रासदी की दूसरी बरसी पर गवर्नर जनरल सैम मॉस्टन ने विशेष ऑस्ट्रेलियन ब्रेवरी डेकोरेशंस सूची में 8 लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने उस दिन लोगों की जान बचाने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड मोहम्मद ताहा ने कोड ब्लैक कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी थी और खुद घायल होने के बावजूद लोगों की मदद की, जबकि उनके सहकर्मी फराज ताहिर इस हमले में मारे गए थे। ताहा ने कहा कि ये सम्मान उनके लिए गर्व का क्षण है और ये देश में प्रवासी कामगारों के योगदान को याद करने का भी एक अवसर है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। थाईलैंड में स्थानीय लोग और पर्यटक थाई नववर्ष सोंगक्रान के पहले दिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए। त्योहार के दौरान लोगों ने एक दूसरे पर पानी की बंदूकों से पानी डाला, जो शुद्धिकरण और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हालांकि थाई चेंबर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी के अनुसार ईंधन संकट के कारण इस त्योहार के दौरान उपभोक्ता खर्च में 3.7% तक की गिरावट आने का अनुमान है, जबकि आमतौर पर देश का ये सबसे बड़े खर्च वाला समय होता है। और अंत में खबरें भारत से। भारतीय सिनेमा की मशहूर और दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है। 70 और 80 के दशक में अपनी आवाज से बॉलीवुड को नई पहचान देने वाली आशा भोसले को दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को भारतीय संगीत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। 8 दशकों तक चले अपने करियर में उन्होंने 11,000 से अधिक गाने गाए और पॉप से लेकर लोक संगीत तक हर शैली में अपनी छाप छोड़ी। आशा भोसले को दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें 2 ग्रैमी नामांकन भी मिले थे। उनका अंतिम संस्कार आज शाम मुंबई में किया जाएगा। इसी के साथ 13 अप्रैल 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।